Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tau Tattvam Najanami. Kidrishosi Maheshwara, Yadrishosi Mahadeva, Tadrishaya Namo Namah. Yo Asau, So Aham Yajami. Om Sham, Om Tat Sat Brahmane Namah. जाग्रदादि त्रयोन्मुक्तं जाग्रदादि मायं तथा ओंकारैक्षु संवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। मांडूक्य उपनिषद में हमारे दैनिक जीवन के अनुभव को लेकर सत्य को समझाने का प्रयत्न किया गया। हमारा दैनिक अनुभव है कि हम तीन अवस्थाओं में से किसी एक में रहते, या जाग रहे होते हैं, या सो रहे होते हैं, या स्वप्न देखते। इन तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त और कोई अवस्था नहीं। बाकी प्रयत्न साध्य हैं। प्रयत्न साध्य का अर्थ है जैसे समाधि, उपासना में तल्लीनता। ये समाधि और उपासना में तल्लीनता या ध्यान में तन्मयता, ये हमारा दैनिक अनुभव नहीं है। रोज ये हमारे अनुभव में नहीं आते। ये प्रयत्न साध्य है और थोड़ी देर के लिए इनका अनुभव होता है, लेकिन पुनः इन अवस्थाओं में से, अर्थात ध्यान की अवस्था में से, समाधि की अवस्था में से, या तल्लीनता में से, हम फिर लौटकर जागृत में ही आ जाते हैं। अवस्था तो जागृत ही है, बाकी वो स्थितियां या परिस्थितियां हैं जो प्रयत्न साध्य। इस तरह से प्रतिदिन हम जागना, सोना और स्वप्न देखना, इनका अनुभव करते। इनका अनुभव करते हुए शास्त्र ये कह रहा है कि जो भी इनका अनुभव करता है, जाग रहे हो, सो रहे हो, तो ये वस्तुतः हमारी बुद्धि या मन जागता है, सोता है, स्वप्न देखता, आत्मा का इनसे संबंध नहीं। आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा ही सत्य है। सत्य का मतलब है कि वो तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अवस्थाएं बदलती रहें, जहां परिवर्तन होता रहे, वो सत्य नहीं है। उसको हम सत्य का विवर्त कहते हैं। परिवर्तनशील भी सत्य ही है, लेकिन वो मूल सत्य ना होकर, परम सत्य ना होकर, सत्य का विवर्त मात्र है। विवर्त का अर्थ होता है जैसे समुद्र की लहरें। समुद्र भी है और उसकी लहरें भी। लहरें समुद्र का विवर्त मात्र है, अर्थात वो बनती रहेंगी, मिटती रहेंगी। कभी छोटी लहर होगी, कभी बहुत बड़ी भी हो सकती है, कभी धीरे से भी वो चल सकती हैं, कभी बहुत जोर से भी वो दौड़ सकती हैं। लेकिन समुद्र जो कहते होंगे, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र का पता ही उसकी लहरों से लगता है, लेकिन समुद्र लहरों के बिना भी रह सकता है, लहरें समुद्र के बिना नहीं रह सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि ये अवस्थाएं आत्मा के बिना नहीं होंगी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, लेकिन आत्मा इनके बिना भी है। ये अवस्थाएं ना भी हों, आत्मा तब भी है, और ये अवस्थाएं रहें, आत्मा तब भी है। वो इनके होने और ना होने का साक्षी, अर्थात वो इनका होना या ना होना जानता है, वो इनका प्रकाशक है। तो इस तरह से अवस्थाएं जो हैं, को एक बात थोड़ी सी जो बारीकी से समझने की है वो ये है कि ये जो सोना जागना उठना है, इसमें भी काम तो चेतना का ही है। सो जाते हैं, चेतना नहीं रहती, जागते हैं चेतन हो जाते हैं, और स्वप्न में भी चेतना रहती है। इसीलिए स्वप्न में हम देखते भी हैं, कुछ करते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी। अगर चेतना ना हो तो फिर स्वप्न में भी हम वो नहीं कर पाए। स्वप्न में जो कुछ भी है वो चेतना ही चेतना है, चेतना ही सब कुछ बनी हुई। ऐसा थोड़ी देर के लिए माने कि जो भी वहां स्वप्न की तस्वीरें हैं, बाकी सब चीजें हैं, वो चेतना ने ही वो विभिन्न रूप धारण कर रखे, और जागने पर चेतना वो आप में समाहित हो गई, दृश्य खत्म हो गए, जो कुछ देख रहे थे वो जाता रहा। तो ये जिसको शास्त्र की दृष्टि से आप देखो तो एक शब्द है चेतन, एक है चेतना। चेतन आत्मा को कहते हैं और चेतना आत्मा का विवर्त। जैसे समुद्र की बात कर रहे थे कि लहरें रहेंगी तब भी वो है, नहीं रहेंगी वो तब भी, चेतन तब भी रहेगा, चेतना रहे न रहे। सोने में चेतना नहीं रहती। अगर किसी ने हमें एक इंजेक्शन लगा दिया एनेस्थीसिया का, क्लोरोफॉर्म का, तो चेतना नहीं रहेगी, चेतन रहता है। चेतना न रहने से हमें शारीरिक सुख दुख नहीं होगा। कोई ऑपरेशन कर दें, उंगली काट दें, हार्ट ऑपरेशन कर लें, कुछ भी कर लें, तो इंजेक्शन जिसको सुलाता है वो चेतना है, चेतन को नहीं सुलाता। जब फिर चेतना लौट आती है तो उस चेतन को हम भूल जाते हैं, चेतना में ही रहते हैं। वास्तविकता ये है कि अगर चेतना ना हो तो चेतन का पता भी न लगे। चेतन परम तत्व है, वो जब हम सो जाते हैं तब भी रहता है, चेतना सोती है ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। चेतना अपने आप को अभिव्यक्त करती है मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से, या आप ऐसा मान लो कि परम चेतन में से ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण एक पात्र की तरह है। जैसे समुद्र में से हम एक लोटा जल भर ले, तो एक लोटे में जितना जल आया वो अलग बात है, लेकिन समुद्र अपनी जगह पर अलग बात। यहां पर क्योंकि उदाहरण भौतिक है तो जल तो अलग हो जाएगा, समुद्र से आप लेके लोटा चल पड़ो तो अलग चलता रहेगा। जहां चेतन की बात होती है वहां वो अलग नहीं होता। जैसे इस कमरे के आकाश से महाआकाश अलग नहीं है, इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं ये भी आकाश है और बाहर जो खुला आकाश है वो भी आकाश है, लेकिन ये आकाश उस बाहर वाले आकाश का कोई टुकड़ा नहीं है कि काट के हमने अलग कर दिया। जैसे हम जल लेकर समुद्र से चल पड़े तो वो जल जितना हमारे पास है समुद्र से अलग हो गया, ऐसा दिखलाई देता है। बहुत तत्व की दृष्टि से देखोगे तो वो भी अलग नहीं होता कभी भी, क्योंकि जल का जो असली रूप है वो तो वही दो गैसेस ही हैं कि दो गैसेस के मिलने से जल बनता है। जिसको ये दोनों के दोनों मिला दो तो पानी बन गया, ना करो तो अलग की अलग रह जाएंगे। इस तरह से दोनों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिला दी आपने तो पानी बन गया, और अगर नहीं है तो वो गैसेस तब भी हैं, गैस के रूप में पानी एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुआ, ना समुद्र का ना उसका ना उसका। वो जहां कहीं दो मिल गई लगता है हमें कि ये अलग है, जैसे इस कमरे का आकाश हमें लगता है कि ये महाआकाश से अलग है। वास्तविकता ये है कि ये कमरा ही आकाश में कल्पित है, इसके अंदर भी बाहर भी सब जगह आकाश ही है। तो चेतन कुछ इस तरह की बात है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, ये दो शब्द हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब आत्मा है, अवेयरनेस का मतलब अंतःकरण। कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो अवेयरनेस भी नहीं हो सकती, लेकिन अवेयरनेस के बिना भी कॉन्शियसनेस रह सकती है। आत्मा तब भी रहेगा जब हम सो रहे हैं। आत्मा का मतलब चेतन। चेतन तब भी रहेगा जब हम सो रहे हैं और चेतन तब भी रहेगा जब हम जाग रहे हैं। लेकिन जब जाग रहे हैं तो चेतन चेतना में परिवर्तित होता है। परिवर्तित होने का मतलब वो वैयक्तिक, वैयक्तिक का अर्थ हो गया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का अर्थ हो गया मैं। जहां मैं का शब्द आएगा, मैं और तू, फिर हम अलग अलग हो गए। मूल रूप से चेतन एक ही है, लेकिन हम जब अपने आप में मैं का वो करके अभिमान के मैं ये हूं मैं वो हूं मैं वो हूं, ऐसे लगता है जैसे वो चेतन हमारे में अलग अलग है। तो चेतन अलग भी हूं तो चेतना अलग नहीं। जैसे कमरे, किसी का छोटा कमरा है, किसी का बड़ा है, किसी का और बड़ा हाल है, तो कमरों के अंदर वाला आकाश छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस आकाश से ये जुड़ा हुआ है वो आकाश हम वही सब में है। अर्थात सभी कमरों में आकाश वही है, लेकिन अपनी अपनी दीवारें देखने पर हमें लगता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा। ऐसे ही वो चेतन या आत्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, वो तो सब में एक ही है, लेकिन अंतःकरण के कारण मन और बुद्धि, ये हमारी जो अलग है, इसमें लगता है कि वो अलग अलग है, अलग अलग है। तो एकत्व को बात ये है कि असली स्वरूप क्या है। हमारा जो असली स्वरूप है वो जागने वाला है मैं हूं, या सोने वाला मैं हूं, या स्वप्न देखने वाला हूं, ये बात हो रही, ताकि पता लग जाए कि मैं हूं क्या। अगर अपना एक ठीक से सही पता लग जाए तो कोई झंझट नहीं रहता, सारी परेशानियां दूर हो जाए। परेशानियां कब तक हैं? जब तक हमें अपना असली पता नहीं है कि मैं जागने वाला हूं या सोने वाला हूं या स्वप्न देखने वाला हूं, मेरा सही स्वरूप क्या है, जिसको शास्त्र की भाषा में आपने विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहा। विश्व का मतलब है जिस समय मैं जाग रहा हूं उस समय मेरा नाम विश्व है, जब मैं स्वप्न देख रहा हूँ मेरा नाम ही तेजस है, जब मैं सो रहा हूँ मेरा नाम ही पराग्या। और इन तीनों से सोने जागने और नींद से परे मेरा स्वरूप तुरीय है। तुरीय स्वरूप का मतलब है कि चेतन, चेतना नहीं। चेतना जागती है, चेतना सोती है, चेतना स्वप्न देखती है, लेकिन चेतन कुछ भी नहीं देखता, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये जो मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये सब चेतना में है, चेतन में नहीं। चेतन तो सभी के लिए एक, या यूं करो कि चेतन तो सभी आकारों में वही है। चेतन ही सब बना हुआ है, चेतन सबके अंदर एक जैसा है, लेकिन चेतना में हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। फिर ये भी बात आपने देखी कि जागृत में भी हम सही नहीं देखते चीजों को, और स्वप्न में भी सही नहीं देखते। दोनों ही जगह पर अन्यथा ग्रहण, चीजों को सही नहीं देखने का कई उदाहरण आए। रोज जिस भी बात को देखते हैं, आप स्वयं भी विचार करके देख सकते हैं कि जो जागते हुए भी ठीक नहीं देखते, जागते हुए ठीक नहीं देखने का अभिप्राय ये है कि जो हमारी नजर के सामने जो शक्लें आ रही हैं, यही शक्लें अगर कैमरे से फोटो खींचोगे तो और तरह की हैं, अगर एक्सरे से फोटो खींचोगे तो वो और तरह की। अब उसमें असली कौन सी शक्ल है हमारी, कैमरे वाली या एक्सरे वाली, ये निर्णय करना पड़े। और फिर ये कहो कि नहीं दोनों ही मेरी शक्लें हैं तो दो हुआ नहीं करती। इसलिए जहां मैं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, ऐसा भी मैं हूं, वैसा भी मैं हूं, ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो इसका अर्थ है कि मैं परिवर्तनशील हूं, बदलता रहता हूं। कभी मेरी इस तरह की शक्ल है, कभी मेरी इस तरह की शक्ल है, तो जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं होता। यही शास्त्र का इतना ही कहना है कि जब तक आप सत्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सारी परेशानियां रहेंगी। स्वप्न की ये बात भी देखी कि भाई स्वप्न को इसलिए झूठ कह लेते हैं क्योंकि स्वप्न में जिन चीजों को देखते हैं वो चीजें वहां पर होते तो हम हैं यहां पर बम्बई में सोए हुए, स्वप्न में हम घूम रहे हैं हिमालय की चोटी पर, तो है कहीं नजर कुछ और आ रहा है। ऐसे ही स्वप्न में हमने देखा कि वहां पर हवाई जहाज पर बैठा हुआ मैं कहीं जा रहा हूं, हवाई जहाज पर भी मैं ही बैठा हुआ हूं, जा भी मैं ही रहा हूं, और वो भी मेरे अंदर रहा है, शरीर के अंदर ही है, स्वप्न बाहर नहीं है। तो इसलिए मेरे अंदर हवाई जहाज चले, अब कोई एरोड्रम तो हूं नहीं मैं ना, मेरा तो ये 3 फुट समझ लो, 5 फुट लंबा चौड़ा शरीर, 5 फुट 6 फुट जितना भी कह लो, तो उसमें तो हवाई जहाज आ नहीं सकता, लेकिन उसमें देखते हैं, इसलिए भी हम स्वप्न को गलत कह लेते हैं। और फिर इस बात को भी देखा आपने कि जागते हुए भी हम ऐसा ही करते हैं। अब हम यहां बैठे हुए हैं और मेरा जैसे हरिद्वार से संबंध है, हरिद्वार में मेरा मन अभी हरिद्वार जाके घूम आएगा। इस समय जब जो ही नाम भी लिया हरिद्वार का, तो मुझे बातें आपसे कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लेकिन हरिद्वार वाला आश्रम, गंगा जी का किनारा, सब लोग, वो साथ के साथ मैं देख भी गया, तो मन वहां पहुंच गया, अर्थात जागते हुए भी स्वप्न में हूं। इसलिए स्वप्न में और जागने में कोई अंतर नहीं होता। जैसे यहां बैठे बैठे मैं अब भी वहां जाता हूं, ना बोल रहा हूं, अक्सर आम तौर पर हम बोल नहीं रहे होते जब आप चुपचाप बैठ के कुछ सोच रहे, आपने इलाहाबाद जाना है, आपने दिल्ली जाना है, और आप अगर सोच रहे हो बैठे हुए कि दिल्ली जाना है, वहां वो मिलेगा, वहां ऐसा होगा, वहां किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, ये जितना कुछ भी आप कर रहे हो ये सब स्वप्न, क्योंकि ये मन से ही हो रहा है। और स्वप्न मन से ही होता है, स्वप्न में इन इंद्रियों का कोई काम नहीं। तो जहां दोनों जगह मन का व्यापार है, तो फिर एक को सत्य और एक को झूठ मान लेना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। तो स्वप्न ही स्वप्न है। देखो स्वपन की एक बात ये हो सकती है कि आप कहते हो कि स्वपन को फिर दोबारा नहीं बुलाया जा सकता, तो जागृत में भी आप दोबारा जो कल गुजर गया उसे दोबारा नहीं बुला पाओगे। कल की बात छोड़ो, जो अभी एक सेकंड पहले गुजर गया, अगर आप चाहो कि ये दोबारा आ जाए तो नहीं आएगा। बचपन को चाहो कि एक बार फिर आ जाए कहीं, तो वो नहीं आएगा। फिर उसके गीत ही गाते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, लेकिन वो लौटे नहीं आज तक। जागते हुओं को भी नहीं लौटे, स्वप्न वाले भी नहीं लौटे। तो फिर दोनों में फर्क क्या, दोनों में अंतर क्या, एक को सच और एक को झूठ कहने की क्या आधार है? देखो, जब ये बात कहते हैं कि जागते हुए भी स्वप्न में ही हो, इसका अर्थ केवल इतना ही है। कई बार ये बात मन में आ जाती है कि जागते हुए भी अगर इसको हम स्वप्न समझेंगे तो काम कैसे चलेगा। शास्त्र ये कह रहा है, आप समझो न समझो, हो स्वप्न में, आपको वहम है कि जागते हुए हम कुछ और कर रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि जागते हुए भी अगर हम स्वप्न जैसा ही समझेंगे तो काम कैसे चलेंगे। असल में काम जो चला रहे हो ये सब है स्वप्न ही, आप इसको मानो या ना मानो। आप मान लोगे स्वप्न जैसा है तो थोड़ा झंझटों से बच जाओगे। स्वप्न जैसे का है मतलब असली नहीं है, ये नफा और नुकसान असली नहीं है, ये मान और अपमान असली नहीं है, यहां से मैं निकल गया हूं वहां चला गया हूं, ये असली नहीं है, ये आने जाने वाले। तो जीवन में सहजता रहेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको स्वप्न को भी कोई सत्य मान ले तो उसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते। कई साइकिक केस ऐसे भी होते हैं कि वो स्वप्न को सत्य मान लेते। और बड़ी विचित्र बात है इस संसार की कि कुछ एक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि किसी ने एक स्वप्न देखा और फिर उस स्वप्न के पीछे पीछे चल पड़ा और उसने जाके बहुत बड़ा खजाना मिल गया, उसको निधि ढूंढ ली। ऐसे ऐसे दो चार उदाहरण भी आपको मिलेंगे कि स्वप्न में उसने कुछ देखा और फिर उसके पीछे लग गया और अंत में उसको प्राप्त भी कर लिया। इस तरह का जो एकाध उदाहरण मिल जाता है वो आम आदमी को स्वप्न के पीछे लगा देता है कि शायद मुझे भी ये मिल जाए, शायद ये भी हो जाए, और फिर आदमी की इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए स्वप्न शास्त्र बन गया पूरा, स्वप्न के एक्सपर्ट बन गए कई कि वो आपके स्वप्न की व्याख्या करेंगे कि क्या इसका अर्थ है। तो वो भी एक काम बन गया, एक धंधा है, व्यापार है, अच्छा चलता है वो भी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वप्न का ही फायदा पूछने जाते हैं कि स्वप्न आया था इसमें क्या होगा, फिर वो बतलाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये एक पूरा शास्त्र बन गया। कहने का अभिप्राय ये है कि स्वप्न को भी अगर सत्य मान लोगे तो वो आपके जीवन को बदल देगा, और अगर जागृत को भी आप स्वप्न मान लोगे तो ये भी आपके जीवन को बदल देगा। बदल दोनों ही चीजें देगी, लेकिन अगर स्वप्न को सत्य मान लोगे तो क्लेश बढ़ जाएंगे, आ गई बहुत से हैं और बढ़ जाएंगे, और अगर जागृत को स्वप्न मान लोगे तो क्लेश खत्म हो जाएंगे, क्लेश नहीं रहेंगे उसमें। देखो, मैं ना जागृत हूं ना मैं स्वप्न वाला हूं ना मैं सोया हुआ, क्योंकि मैं जब स्वप्न में जाता हूं तो जागृत वाला नहीं रहता, और जब नींद में जाता हूं तो जागृत स्वप्न दोनों ही खत्म हो गए। तो मेरा असली स्वरूप अर्थात जागने के बाद अपने आप को ये मान लेना। देखो, कई लोग एक बहुत अच्छा प्रसंग समझ लो इस बात को कि ऐसे किसी वेदांत वाले एक महात्मा को एक ने कहा कि महाराज जी, जितना भी मर्जी आप समझाओ कि शरीर अलग है और वो अलग है, लेकिन फिर भी जब कोई गाली देता है, जब कोई वो होता है, तो मान अपमान में दुख तो होता ही है। किसी ने गाली दी तो दुख तो होगा ही, और महात्माओं को भी होता हुआ देखा। तो उन्होंने कहा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जाकर बैठ ही कूड़ेदान में जाए जो कूड़ा जिसमें फेंकने डस्टबिन में कोई बैठ ही जाए जाके तो उस पर कूड़ा करकट गिरना तो जरूरी है। अब वहां पर तो कोई और दूसरी बात है ही नहीं, जो बैठा ही डस्टबिन में है तो जरूरी है कि उस पर उसके सिर पर ये फेंका जाए कूड़ा करकट ये। और फिर उन्होंने कहा कि ये शरीर जिसको तो अपना मान रहा है इसमें है क्या? अगर सचमुच में अपने शरीर की तो बातों को देखें, ऊपर की चमड़ी को जरा सा हटा दो, एक्सरे में ही आप जरा देखो अपनी हड्डियों को, उनको भी छोड़ दो तो मल मूत्र रक्त मेधा मांस मज्जा ये पांच सात चीजें जो इनमें ही घुस के बैठ जाए इसको अपना माने, इससे बढ़ के कूड़ेदान और कौन सा होगा? जो इसमें ही घुस के बैठ गया कि ये मैं हूं तो उसके सिर पर तो और कूड़ा पड़े तो अच्छी बात ही है, उससे बच कौन सकता है? इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि कूड़ेदान से उठ के अलग हो जा, आत्मा की तरफ आ जा। क्यों तू शरीर को ही अपना मान के बैठा हुआ? क्योंकि आत्मा पवित्र है, सत्चित आनंद। अगर तू अपने आप को सत्चित आनंद मानता है तो दुनिया का कोई कूड़ा करकट तुझे छू ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो वो है जो अपवित्र को भी पवित्र कर दे। अभी हमारे में आत्मा है तो इसलिए हमारा ये जो कुछ भी है जो अंदर है हमारे वो पवित्र लगता है, लेकिन वो आत्मा से अलग होते, जैसे उदाहरण भी है कोई भी चीज नाखून आप काट के रख दो बाद में वो नाखून ही अपवित्र हो जाते हैं, आप थूक दो वो थूक अपवित्र हो गए, जब तक आपके अंदर है वो पवित्र है। तो शास्त्र कहता है अंदर की बात नहीं है, जितना वो आत्मा के नजदीक है तब तक वो पवित्र है, तभी तक इस शरीर को प्रणाम भी है वो भी है ये भी है, और उस आत्मा से के हटते ही ये शरीर भी अपवित्र है। इसको हाथ भी लग जाएगा तो फिर स्नान करते हैं कि अब नहाना पड़ेगा, इसलिए प्रणाम तो मरने पर भी करेंगे लेकिन दूर से ही, फिर कोई गले लगा के प्रणाम नहीं करेगा, दूर से ही करेंगे और करके अपना चलते बनेंगे। तो इसलिए अगर कोई बैठ ही उस कूड़े करकट में जाए तो इसमें कोई क्या कर लेगा? तो ये उससे हटाने की प्रक्रिया है कि रहें तो सही हम अपने काम भी करते रहें, लेकिन मान अपमान लाभ हानि इन बातों से अलग हो जाए, इन बातों में हम न फंसें। क्यों? क्योंकि अपना सही स्वरूप न जागृत वाला है, जो जागृत में कर रहे हो ये भी नहीं रहना, और जो स्वप्न में किया है वो भी नहीं रहना, और जो नींद में जिसका भोग किया रहना वो भी नहीं रहेगा। अंत में वही जिसको आप चेतन कह रहे थे, चेतना से जुड़कर हम केवल इन तीन अवस्थाओं का ही भोग कर सकते हैं और किसी चीज का नहीं कर सकते।